مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل۔ دوستو، پاکستان میں کئی سال پہلے نیوز ویب سائٹس منظر عام پر آنا شروع ہوئیں اور ان کے ساتھ میڈیا گروپس نے بھی اپنی ویب سائٹس بنانے کا آغاز کیا۔ ان کی ریڈرشپ اور فالوورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو خبریں اور معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بنی ہیں۔ کیا یہ ویب سائٹس اخبارات اور ٹیلی ویژن نیوز چینلز کا نیم البدل بن رہی ہیں؟ کیا یہ سینسرشپ سے بچنے میں مدد دیتی ہیں؟ کیا یہ منافع بخش ثابت ہو سکتی ہیں؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ آج ہم اس بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جن لوگوں کو آج دعوت دی ہے، میں ان کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں۔ عدنان خان کاکڑ مقبول ویب سائٹ ہم سب کے ایڈیٹر ہیں، ہارون رشید انڈیپینڈنٹ اردو کے ایڈیٹر ہیں، رضا رومی نیا دور کے نام سے ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں، اس سے پہلے یہ پاک ٹی ہاؤس اور دوسری ویب سائٹ سے بھی منسلک رہے ہیں، جمال عبداللہ احسان صاحب دلیل کے ایڈیٹر ہیں، اور ان کے علاوہ محمد شعیب لالٹین کے نام سے ایک مقبول ویب سائٹ کے ایڈیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بے نظیر سمجھ سے ہی بات کریں گے، جو سوشل میڈیا کی ماہر ہیں اور ایئر وائی سے وابستہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے عدنان کاکڑ سے گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ عدنان صاحب، یہ بتائیں نیوز ویب سائٹ چلانے کی کوئی وجہ، کوئی ضرورت، کوئی نصب العین ہمیں بتائیں، کیوں آپ نے ہم سب کے قیام میں تعاون کیا، مدد کی، قائم کی، کیا وجہ تھی؟
جناب، اس میں ایک ہمارے پاس نا پرنٹ میڈیا میں جمود کاری تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے وہی کالم نگار جو 1970 اور 1980 سے لکھ رہے ہیں، آج بھی وہی دکھائی دیتے ہیں آپ کو۔ تو جو ایک نئے خیالات معاشرے میں آ رہے ہیں، نئے مسائل آ رہے ہیں، ان کو ڈسکس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے پاس خود اپنے پاس کہنے کے لیے چیزیں تھیں، ہمارے دوستوں کے پاس تھی، ہمارے ارد گرد لوگوں کے پاس تھی، تو وہ بیسیکلی ایک ہم نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہم نے ایک ذریعہ نکالا ہے جہاں ہم اور ہمارے دوست اور باقی سارے لوگ جو کنویشن کیے ہیں وہ اپنی بات کر سکیں۔ پرنٹ میڈیا میں ظاہر ہے جگہ بہت کم ہوتی ہے، بہت محدود ایک ان کے پاس صفحات ہوتے ہیں، ادھر نئے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ آن لائن میں، ڈیجیٹل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ بہت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔
تو کتنا مواد نیا اور اوریجنل آپ شائع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو لفٹ بھی کرتے ہیں، تو اس میں کتنا کیا ریشو ہے؟
اس میں اباؤٹ ہم تقریباً 80% ہمارا اوریجنل ہوتا ہے۔
اچھا،
اس میں جو مختلف لوگوں کے بلاگس آ رہے ہیں، باقی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ خبریں بھی ہم اوریجنل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا بی بی سی کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کا ایک کانٹینٹ شیئرنگ کا معاہدہ ہے، تو 10% ہمیں بی بی سی سے ملتے ہیں اور 10% ہم اخبارات سے پک کرتے ہیں۔
تو وہی وسعت اللہ خان، وہی ایاز امیر، وہی اظہار الحق ہر ویب سائٹ پر نظر آتے ہیں، ان کا ایک کالم جو اخبار میں چھپتا ہے، پھر وہی ہر جگہ چھپا ہوتا ہے، وہی ہم سب پہ، وہی دلیل پر، وہی اور دوسری ویب سائٹ پہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟
اس میں ایک فائدہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہر ویب سائٹ کی ایک مخصوص ریڈرشپ ہے آپ کے پاس، تو ان کو میں پانچ مختلف ویب سائٹ پر نہیں جانا پڑتا، وہ ایک جگہ پر ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک جو یوزر ہمارے بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلاں کالم نگار رہے ہیں، ان کا کالم بھی اپنے پاس لگایا کریں۔ اس طرح کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں ہمارے پاس۔
تو جن لوگوں کے آپ آرٹیکل ایسے چھاپتے ہیں، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کبھی کسی نے شکایت کی ہو کہ آپ نے میرا مضمون کیوں لگا دیا؟
ہم جس کا بھی لگاتے ہیں اس رائٹر سے اجازت لیتے ہیں پہلے۔ اجازت لینے کے بعد ہم لگاتے ہیں۔
اچھا، ایک دن میں کتنی ریڈرشپ ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق کیا زیادہ مواد سے ہوتا ہے یا اچھے مواد سے ہوتا ہے؟ اس میں کیا کتنا کیا فرق ہے؟
ایک جو مواد ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی ویب سائٹ کی کریڈیبلٹی کو، اس کی کوالٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ آپ کا جتنا اچھا مواد ہوگا، اتنے زیادہ ریڈر آپ کے پاس آئیں گے، اتنے زیادہ آپ کے ویوز بڑھیں گے۔ تو مواد سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لیے کون لوگ لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، جنہوں نے ہمارے پاس سے لکھنا شروع کیا، اب ان کی بہت اچھی ریڈرشپ ہے۔
تو ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوز ویب سائٹ سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یا یہ صرف فی سبیل اللہ خدمت ہے؟
یہ فی سبیل اللہ خدمت ہے، اس میں کوئی پیسہ کمانے کا نہیں ہے۔ جیسے ہم اس کو سب سے زیادہ पॉपुलर वेबसाइट है हम सब
जी,
लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम अपना डेडिकेटेड स्टाफ हायर कर सकें। हमें वॉलंटियर्स भी काम चलाना पड़ रहा है जो कि पार्ट टाइम हमारे लिए काम करते हैं और फिर सभी लड़ाई करते हैं।
तो ये
होस्टिंग के बाकी खर्चे हम निकाल लेते हैं लेकिन हम स्टाफ अफोर्ड नहीं करते।
तो ये तो हौसला शिकनी वाली सूरत हाल नहीं है, क्योंकि फिर तो आप कभी अखबारात का नेमुल बदल नहीं बन सकते। अखबारात तो ज़्यादा इश्तहार छापते हैं और मार्केट में बिकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को स्टाफ रख के उन्हें पैसे देते हैं, तो इस लिहाज से तो ये एक हौसला शिकनी वाली सूरत हाल है।
फिलहाल हौसला शिकनी वाली बात है, फिलहाल जो भी लोग चला रहे हैं हमारे तो होस्टिंग और दूसरे खर्चे निकल आते हैं, लेकिन बहुत सी वेबसाइट जो कि अपनी जेब से चला रही हैं टोटल, और वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, एक सोसाइटी को कुछ पे बैक करने के लिए वो उसको चलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक चीज आ रही है ना कि अब ऐसा ऐसा जो आपके है ना एडवर्टीजमेंट सारा वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है।
अच्छा,
5 साल के बाद मेरा अपना अंदाजा है कि हम यानी वेबसाइट जो भी है वो अच्छा कमा रही होंगी।
अच्छा,
तो आपके गवर्नमेंट भी और बाकी जो प्राइवेट इदारे भी ऐसा ऐसा डिजिटल एडवर्टीजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
इसमें एक मसला ये बज़ाहिर लगता है कि जब किसी सरकारी इदारे ने फ़र्ज़ किया इश्तहार देना है तो उसके पास मजबूरी है कि वो अखबार के पास जाएगा और अपना इश्तहार देगा, लेकिन इंटरनेट पर तो हर एक को ये सहूलत हासिल है कि वो अपनी वेबसाइट बनाए और अपने वहीं से एडवर्टाइजिंग करे। ज़ाहिर हर इदारे का हर शख्स का अपना पेज बना हुआ है, तो फिर कोई क्यों आके इश्तहार देगा न्यूज़ वेबसाइट में?
ये ना बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट भी है ऐसा ऐसा ना, जैसे कुछ कानून पाकिस्तान के अंदर भी बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म पे आपने एड्स देने हैं, ऐसा ऐसा हमारे पास चेंज आ रही है, लीगल फ्रेमवर्क बन रहा है। इसमें फिर एक चीज का फर्क है, आपको पता ही है कि जो अखबार की जो एक्चुअल सर्कुलेशन होती है उससे बहुत कम होती है, उसमें जो एक्चुअल होती है उसमें फर्क होता है जो कि इश्तहार के लिए अप्लाई की जाती है। डिजिटल में जब भी हम जाते हैं ना तो जो भी एडवर्टाइज कर रहा है उसको एग्जैक्टली पता होता है कितने लोगों तक हमारा इश्तहार पहुंचा है, ठीक है, और उसके बल्कि वो रिस्पांस भी इंटरेक्टिव देख सकते हैं कि हाँ जी 1000 लोगों तक मेरा इश्तहार पहुंचा है, उसमें से 50 लोगों ने मेरे इश्तहार के ऊपर क्लिक किया और उसको आगे लेकर पढ़ा है। अखबार में प्रिंट मीडिया में ये सहूलत नहीं है, तो लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वेस्ट में हो चुके हैं, इधर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में ऐसे ऐसा हो रहे हैं, शिफ्ट आ रही है।
अच्छा, एक बात ये कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एक लेबल लग जाता है, जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि ये लिबरल लोगों की है और तरक्की पसंद लोगों की है, जैसे दलील के बारे में कहा जाता है कि वो दाएं बाजू के लोगों की है, तो क्या इसके बाद फिर उसी तरह की रीडरशिप आती है या दूसरी तरह दूसरे लोग भी पढ़ते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी नज़रिए से मुंसलिक हो जाएँ या किसी खास ख्याल से मुंसलिक हो जाएँ तो फिर सिर्फ उसी तरह के लोग आना शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है?
हम तो ये आम हालात में ये बात ठीक है, लेकिन हम सब के बारे में ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब की क्वालिटी है कि लिबरल होने के जो सबसे पहला असूल हम समझते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अपनी बात कहने का हक हासिल है, लेकिन हमारे मुखालिफ नजरियात के हम लोगों से मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले लोग हैं उन्हें भी इतना ही हक हासिल है कि वो अपनी बात कहें, तो उनको हम उतनी ही जगह देते हैं जितने अपने हमख्याल लोगों को, और उसका नतीजा ये निकला है कि जो राइट के लोग जो दूसरे लोग भी हैं वो भी एक बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते हैं जाहिर है, लेकिन जो हमारा इर्द गिर्द मिलने जुलने वालों से जो इधर जैसे मार्केट से हमें पता चलता है, लोगों से पता चलता है, कम अज कम हमारी 50% रीडरशिप है वो लिबरल नहीं है।
अच्छा, एक बात ये कि आपने एक खसूसी इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया था और उस पर काफ़ी ले दे भी हुई थी, काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की थी, शायद आपने कुछ मेहमान ऐसे मुंतखब कर लिए थे, तो लेकिन फिर वो सिलसिला आपने बंद क्यों कर दिया? क्या उस पर रद्द अमल से घबरा गए या फिर मसरूफियत आड़े आ गई या लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया, क्या वजह बनी फिर उसे रोकने की?
हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक 2 घंटे के इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब कर सकें, हम करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की वजह से हमें रुकना पड़ा।
अच्छा, तो फिर अब इस ये क्या वेबसाइट आप इसी तरह चलाते रहेंगे जैसे उसका आपने बना दिया है लेआउट कहना चाहिए और जैसे उसका मवाद आपने सोचा हुआ है कि जैसे आप रोज़ाना कुछ कॉलम उठा लिए, कुछ लोगों ने आपको आर्टिकल्स भेज दिए, या कुछ नया भी करेंगे, कुछ आपके जहन में प्लानिंग है कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा?
देखिए, वक्त के साथ साथ चेंज आती रहती है, जैसे यार प्रिंट मीडिया तेजी से खत्म हो रहा है, डिजिटल उसकी जगह ले रहा है, और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है कि मैं अपने घर में अखबार लगवाने की जगह 5 अखबार को अपने हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर मैं पढ़ लूँ सारा, ठीक है। तो इस तरह अभी हम प्रिंट के ऊपर है, जिस तरह वेस्ट में जा रहे हैं हम तकरीबन से कुछ 5 साल मेरा ख्याल पीछे हैं, हमें भी वही ट्रेंड फॉलो करने होंगे, वो चेंजेस हमारे पास भी आएंगे, हमें हम जाएंगे पॉडकास्ट पे जाएंगे, हमारे पास वीडियोज आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास। टेक्नोलॉजी किसी एक जगह रुकती नहीं है और हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेंगे।
लेकिन उसके लिए तो फिर आपको स्टाफ ज्यादा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वीडियो को तो फिर आपको, अभी तो आपने टेक्स्ट खुद एडिट कर दिया, लेकिन जब आप वीडियोस या ऑडियोस लगाएंगे तो फिर आपको उसके एडिटर भी चाहिए होंगे, तो फिर क्या उसका खर्चा बर्दाश्त करने के काबिल हो सकती हैं न्यूज़ वेबसाइट्स?
न्यूज़ वेबसाइट्स इतनी हमारी चल रही है ना, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट चल रही है, ये बेसिकली चल रही है मोस्टली, कुछ टॉप की दो तीन है जो हमारे अपना खर्चा उठाती है, लेकिन मोस्टली जो चल रही है वो वॉलंटियर्स से चल रही है। जैसे आपको इधर हमें लिखने वाले वॉलंटियर मिलते हैं, हमें एडिटर वॉलंटियर मिल रहे हैं जिसका स्टाफ हमारे लिए टाइम निकालता है, उसी तरह हमें वीडियो एडिटिंग और उन चीज़ों के लिए भी हमें कुछ वॉलंटियर मिल जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जब आप एक वेबसाइट के साथ जुड़ते हैं आपको लगता है कि हमारी हम ख्याल है, जिधर हम अपनी बात कर सकते हैं, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, तो आपके दिल में ख्वाहिश होती है कि हाँ जी हम इसको ना मजीद कामयाब करें, इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। तो इस तरह हमारे पास भी एक यानी हमारे पास अभी तक तकरीबन 5 वॉलंटियर्स हैं जो हमारे काम करते हैं, लेकिन हमें ना ऑफर्स बहुत ज्यादा आती है कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हमारे लिए मसला है कि हम सब एक प्रॉपर एडिट होकर यानी एडिट करके हम अपने निगरानी में बाकी चीजें लगाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं, जिनके पर हम पूरा भरोसा कर सकें कि हाँ जी उनकी जजमेंट ठीक होगी, उनका अपना नॉलेज है, बाकी चीजें हैं। इसलिए हम वॉलंटियर बहुत सारे हमारे पास आते हैं यानी ऑफर्स जिनको हम रिफ्यूज करते हैं, हम कहते हैं कि आपका शुक्रिया लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां आ जा रहा है। वॉलंटियर्स की कमी नहीं है, जो करंट जनरेशन है पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अपने बच्चे में करना चाहती है और उनको एक वेन्यू नजर आ रहा है कि वेबसाइट से हम ये कर सकते हैं।
अच्छा, क्या आप ये भी देखते हैं जिस तरह न्यूज़ चैनल्स अपनी रेटिंग के हिसाब से मवाद का फैसला करते हैं, क्या आप लोग भी इस बात का फैसला करते हैं ये देख के कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपने मवाद तख्लीक करते हैं या लोगों से लिखवाते हैं, या बस ये होता है कि जो जिसने लिख दिया वो आपने छाप दिया, इसमें और कोई यानी इजाफा करना या किस ट्रेंड पे चलना ये आप लोग नहीं करते?
बहुत कम होता है कि हम किसी को कहें कि आप इस मौजू पे लिखें, वो होता है कि कोई खास सूरत हाल ऐसी बन रही है और हमें पता है कि हमारे जो राइटर है इसमें ये वाला राइटर इस पे बहुत अच्छा लिख सकता है, इस मौजू पे इंसाफ कर सकते हैं, उस वक्त हम इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके ऊपर लिख लें। अगर ना हमारी जो वेबसाइट की मकबूलियत का राज है, जो की फैक्टर है, वो यही है कि जो लोग जिसका जैसा फील करते हैं,
ठीक है,
जिस वक्त इसका जैसा मूड है उसके हिसाब से अपने कॉन्टेक्ट को बना के हमें भेजते हैं।
ठीक है अदनान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हम सब के बारे में बताने के लिए, उसकी कामयाबी कैसे मुमकिन हुई इस पे हर किस्म के ख्यालात रखने वाले लोगों को लिखने का आपने मौका दिया और हर तरह की लीडरशिप आपको दस्तियाब है, बहुत शुक्रिया। हमें हारून रशीद साहब ने ज्वाइन किया है जो पहले BBC से वाबस्ता थे, अब इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता हैं, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम न्यूज़ वेबसाइट से बात कर रहे हैं, बल्कि अदनान ने तो हमारी तस्दीक की है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कहना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि सब लोग तो न्यूज़ दे भी नहीं रहे होते जैसे कि और मीडिया दे रहा होता है, क्या ये वेबसाइट्स अखबारात का नेमुल बदल बन सकती हैं?
देखें, जो अगर मुस्तकबिल की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी दुनिया में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो हार्ड कॉपी अखबार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेल कम हो रही है, और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 साल में 15-20% जो इनकी सेल्स हैं वो कम हुई हैं। तो जो फ्यूचर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ्यूचर है, हर चीज़ कहा यह जाता है कि अब भी अक्सर लोग पाकिस्तान में अगर आप सारे देखें ज्यादातर टीवी रेडियो और अक्सर अब खबरें भी जो हैं वो अपने मोबाइल्स पर देखते हैं
जी।
तो फिलहाल तो मुस्तकबिल का
सर आपकी आवाज कुछ कम आ रही है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे रुख पर हों या किसी ऐसे मकाम पर हों कि हमें आवाज ठीक आए, कुछ आवाज बीच में हमें हम ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कम पहुंच रही है हम तक?
मैं जगह तब्दील करता हूं, देखें उससे शायद कुछ फर्क पड़े
जी। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वेबसाइट्स हैं ज़ाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रही हैं और हम तवक्को कर सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में और ज़्यादा इनकी रीडरशिप बढ़ेगी, लोग इन पे ज़्यादा इन्हें फॉलो करेंगे, क्या ये मीडिया सेंसरशिप से बचने का भी एक तरीका है या ये सेंसरशिप की जद में आती हैं?
देखें, मीडिया सेंसरशिप तो हर जर्नलिज्म को अफेक्ट करती है किसी न किसी तरीके से और किसी न किसी सूरत में। वेबसाइट का ये है कि अगर तो उनके डोमेन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं अगर वो डॉट पीके पे खत्म होते हैं तो फिर तो खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कानून के अंदर ज्यादा उन पर उनका लागू होते हैं और ज्यादा दबाव के अंदर वो वेबसाइट्स रह सकती हैं और पाकिस्तानी हुकूमत किसी वक्त भी उनको ब्लॉक भी कर सकती है। थोड़ा सा जो रिलीफ मिलता है वो आपको international.com और उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो जरा से इससे मुबर्रा हो जाती हैं, तो उसमें जरा सा आप पे जो पाबंदियां हैं वो कम हैं। आप उस तरह की वेबसाइट खोलें तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी हुकूमत के पास करवाने का कोई ऐसा बाज़ाब्ता कानून या वो नहीं है, तो उसमें जरा सी नरमी है। लेकिन जो सेंसरशिप है वो काम तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने ही करना है, या जहाँ भी बैठे हुए हैं टेलीफोन कॉल करके और उस तरह से करके आप अपनी दबाव डाल के धमकी करके अपनी मर्जी की चीजें लगवा सकते हैं और उतरवा भी सकते हैं। तो वो कहीं भी हो सकता है, वो अखबार में भी हो सकता है, वो डिजिटल में भी हो सकता है।
अच्छा, आप बीबीसी छोड़ के अपनी टीम लेकर इस नए दायरे में आए, तो यहाँ कुछ काम करने की ज़्यादा आज़ादी थी या कुछ नया करने की ख्वाहिश थी? ज़ाहिर है बेहतर मुआवजा भी इसका एक रीज़न हमेशा होता है, हम साफियों के लिए बल्कि हर प्रोफेशनल के लिए। तो उस आपके क्या मकासद थे, क्या आप यानी आपकी ख्वाहिश थी?
देखें, 21 साल मैंने बीबीसी के साथ गुजारे और रेडियो से शुरू किया, फिर डिजिटल आया, फिर टेलीविजन आया, सारी चीजें की, वहाँ मौके मिलते रहे। और मैं एक बात करता हूँ कि उसने मुझे बेहतरी ये रही कि मैं हर 4-5 साल बाद शहर बदलता रहा। मैं क्वेटा से शुरू किया, फिर पिशावर गया, फिर इस्लामाबाद आया, तो उस वजह से मैं वो मोनोटनी जो होती है वो ब्रेक करता रहा और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये मेरा सबसे बड़ा ज्यादा वक्त था। लेकिन कुछ अरसे से मैं महसूस कर रहा था कि अब कुछ नए की जस्तजू होनी चाहिए, कोई नया काम करना चाहिए, कोई नया चैलेंज होना चाहिए। तो यकीनन माशी भी एक पहलू था उसका, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं था। मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये था कि अब इतना अरसा मैंने कुछ 20-30 साल हो गए सहाफत में, तो आप कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई नया चैलेंज, कोई नई चीज, अच्छा वेंचर शुरू करना चाहिए जिसमें मैं अपने आप को देख सकूं कि मैं कितने पानी में हूँ और मैंने क्या हासिल किया और क्या उसका वसूल है। तो वो ही चैलेंज था बेसिकली एक नई, और चूंकि बीबीसी के अंदर आप बहुत से आपके अंदर हायरार्कीज होती हैं, चीजें होती हैं, यहाँ मैं ऑल इन ऑल हूँ तकरीबन हर चीज का। अगर अच्छी चीज भी कर रहा हूँ तो वो मेरी टीम, मेरी और मेरी टीम का हिस्सा उसमें होता है, लेकिन अगर कुछ बुरा भी कर रहा हूँ तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी मैं अपने आप से समझता हूँ। तो वो एक है कि आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाते हैं, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपने आज कितना अच्छा किया या कितना बुरा किया आज।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत से अच्छे लिखने वालों को भी यहाँ जमा कर लिया है और एक अच्छी टीम बनाई है, लेकिन अच्छे लिखने वालों को या अच्छे काम करने वालों को फिर आपने कैसे जमा किया? ये इसलिए क्या आप मुआवजा देते हैं? क्योंकि वेबसाइट्स तो हमें, हम ये जानते हैं कि वो इतने पैसे नहीं कमाती कि मुआवजे दे सकें, तनख्वाहें दे सकें, तो यहाँ क्या सूरत रही फिर?
जी, यहाँ कदर बेहतर है, चूंकि जो फाइनेंशियल है वो इंटरनेशनल एक बॉडी है और फाइनेंसिस का उन्होंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था कि वेबसाइट चलाना आप बगैर उसके नहीं कर सकते फाइनेंसिस के। बजट एलोकेशन थी और वो इंडिपेंडेंट यूके के साथ, अखबार के साथ उनका फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदा और फिर ये वेबसाइट शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का वो नहीं था। और बेसिक चीज ये है कि जो आपने बात की, जो लिखने वाले हैं इनिशियल रिस्पांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक पाकिस्तान में अगर ब्लॉगिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है तो लिखने का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। मैं समझता हूँ हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में समझता है कि वो बहुत अच्छा ब्लॉग लिख सकता है, वो बहुत अच्छा मजमून लिख सकता है और उसके बदले उसको फिर उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो कि होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी अगर आप फिर देखें तो वो उस तरह की नहीं आती, हर दूसरा आदमी नहीं लिख सकता उस तरह का मजमून जिस तरह के चंद, जो वसतुल्लाह खान का मैं नाम ले लूंगा या मोहम्मद हकीम का ले लूंगा या तलत साहब का ले लूंगा, उस तरह का हर कोई लिखारी नहीं हो सकता। तो फिर वो आप कैटेगराइज करते हैं, आप जो लोग बगैर हमारे मांगे हुए ब्लॉग भेजते हैं, हमने उसके लिए पॉलिसी ये रखी हुई है कि उसका कोई मुआवजा नहीं होगा, वो सिर्फ हम अगर उनका ब्लॉग ही छाप दें तो ये मेरा ख्याल में उनके लिए ज्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। लेकिन फिर कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आप उनको रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, पर फीस पेमेंट होती है और हर वो फिर अपने एक्सपीरियंस और अपने लिखने के स्टाइल और उसकी वजह से हम उसको इवेल्युएट करते हैं।
चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि किसी वेबसाइट के पास पैसे हों, बजट हो और वो लिखने वालों को दे सके, क्योंकि बहुत से अखबार भी लिखने वालों को कोई पैसे नहीं देते। अब एक बात
को देना मुश्किल हो जाता है उनके लिए आजकल, ये हाल है।
ایک بات یہ کہ ہماری قوم کی دلچسپی صرف سیاست میں کیوں رہ گئی ہے؟ کیونکہ زیادہ مواد چاہے بلاگنگ ویب سائٹ ہو، چاہے نیوز چینل ہوں، عام ویب سائٹس ہوں، اخبارات ہوں، سارا مواد سیاست کی طرف ہوتا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو دوسرے ویب سائٹس پہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کھیل، انٹرٹینمنٹ، ادب، ٹیکنالوجی وغیرہ، ان میں بعض اوقات مہینہ مہینہ پرانی خبریں یا رپورٹس پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور سیاست پہ ہر لمحہ کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟
اس کو آپ آئی ڈونٹ نو، میں بدقسمتی کہوں یا خوش قسمتی کہوں کہ پاکستان میں سیاست ہمیشہ گرما گرم موضوع رہا ہے، اور وہ آپ کو ایک انسٹنٹ سٹوریز اور وہ چیزیں دیتی رہتی ہے. جس طرح کے بحران سے گزرا ہے پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری ہے سیاست میں، جس طرح کے حالات گزرے ہیں، تو وہ یقیناً ایک ہے. لیکن اب اگر میں اپنی بات کروں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سیاست کم سے کم ہو، حالانکہ کرنا پڑتا ہے کچھ تھوڑا بہت. آپ بالکل سچ بھی نہیں رہ سکتے کہ بالکل ہی اگنور کر دیں پالیٹکس کو، لیکن اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہیں، جو لوگوں کی پرسنل لائف ہیں، اور خواتین، ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ خواتین زیادہ لکھیں، کیونکہ میرے خیال میں مرد بہت بولے ہیں پاکستان میں اور لکھا بھی انہوں نے بہت ہے، خواتین کو اتنی انکریجمنٹ نہیں ملی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری ویب سائٹ پہ خواتین زیادہ ہیں اور زیادہ لکھیں، اور سیاست پہ نہ لکھیں. ایک اس کی مسئلہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سیاست پہ لکھنا بھی بہت آسان ہے. آپ کسی کی بھی کلاس لے لیں، آپ کو کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن جو آپ کی پرسنل، میں یاد، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک کوہاٹ کی جرنلزم کی طالبہ تھی، انہوں نے اتنا خوبصورت ایک بلاگ لکھا کہ وہ کس طرح سے ان کو مشکل ہے روزانہ یونیورسٹی آنا جانا، اور ایک فیمیل ہوتے ہوئے ان کو کتنا شدید کرب سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ اس طرح کی سٹوریاں خواتین کی سامنے نہیں آتی. یہاں ایک بڑی فورن پالیسی کی میں نام نہیں لوں گا، بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں، ٹی وی پہ پروگرام بھی ہے ان کا، تو ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی خواتین کا پرسپیکٹو مجھے چاہیے فورن پالیسی پہ. تو وہ کہنے لگی کہ خواتین کا کیا، فورن پالیسی تو فورن پالیسی ہوتی ہے، اس میں خواتین یا مرد کا کیا فرق ہوتا ہے؟ تو پھر میں نے ان کو کہا بی بی آپ دیکھیں، اگر یہ نیوزی لینڈ میں جس طرح سے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے ٹریٹ کیا وہ ٹیررزم کا کیس، اور باقی اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں مردوں نے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا، تو دنیا مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. خواتین کس طرح سے چیزیں اپروچ کرتی ہیں اور ڈیل کرتی ہیں اور حل کرتی ہیں ان کا، اور پھر مرد کس طرح سے سوچتے ہیں. میرا خیال میں اگر نیوزی لینڈ کا کوئی پرائم منسٹر ہوتا تو اس میں کوئی ایک اور دہشت گردی کے خلاف جنگ یا عالمی جنگ کا اعلان کر دینا تھا یا کچھ اس طرح کی چیز کر دینے کی، لیکن انہوں نے بینگ اے وومن کس طرح سے اس کو ٹریٹ
مختلف طریقے سے دیکھا.
بالکل، تو وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو لانے کی کوشش ہے، دیکھیں آپ کتنی اس میں کامیابی ہوتی.
ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب، بہت سی دعائیں آپ کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی، شکریہ. ہمیں رضا رومی صاحب نے جوائن کر لیا ہے، سینئر صحافی ہیں، استاد ہیں، اور ویب سائٹ چلانے کا پرانا تجربہ بھی ہے، پاکٹی ہاؤس اور اب نیا دور سنبھال رہے ہیں. رومی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نیوز ویب سائٹس پہ یا ویب سائٹس، بلاگنگ ویب سائٹس پہ بات کر رہے ہیں، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ چلانے کے لیے کتنا عملہ اور کتنا پیسہ چاہیے. کیا چند ایک لوگ کسی بڑے میڈیا گروپ کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں بہترین مواد پیش کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. اور جہاں تک ویب سائٹ کا اور مقابلے کا سوال ہے، تو دیکھیے جب سے بلاگنگ کا آغاز ہوا ہے آج سے 15-20 سال پہلے، تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بہت سارے بلاگز، بلکہ امریکہ میں تو وہیں سے تو یہ کام شروع ہوا کہ جب بلاگز یہ صحافت کے اور لکھائی کے افق پر آئے، تو بہت سارے بلاگز نے بہت سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کی اتنی فالوئنگ بڑھی، لاکھوں اور بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا. تو بالکل آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ بالکل وہ چیز اگر لوگوں کو مین اسٹریم میڈیا سے نہ مل رہی ہو، وہ انفارمیشن یا وہ تجزیات یا وہ معلومات یا وہ پرسپیکٹو، تو وہ پھر یقیناً اس ویب سائٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جہاں تک رہی سوال کی کتنے پیسے اور کتنے لوگ درکار ہیں، تو دیکھیے اس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہم خیال لوگوں کا گروپ چاہیے ہوتا ہے کہ جن میں ایک ہم آہنگی ہو ذہنی طور پر جو وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک مطابقت ہو. کیونکہ یہ صرف نوکری 9-to-5 نوکری والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں ایک جسے انگریزی میں پیشن کہا جاتا ہے، وہ جذبہ اگر وہ میسر نہ ہو तो फिर ये काम आगे बढ़ता नहीं है। और बाकी ये है कि एवरेज एक अच्छी न्यूज वेबसाइट को चलाने के लिए 4 से 5 लोग तो बिल्कुल चाहिए होते हैं।
अच्छा, अभी एक बात ये कि अब हम ख्याल लोगों की आपने बात की और शायद इन वेबसाइट्स का मकसद शुरू में ये था या अभी भी होगा कि जो चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ रही वो हम यहाँ पर उस बारे में बात करें और गुफ्तगू करें। अब एक एक जिक्र किया जाता है बहुत से साफियों ने हमसे, ज़ाहिर रेडियो पे और वैसे वेब के लिए बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सेंसरशिप है, गैर मरई है, नज़र नहीं आ रही लेकिन है, दबाव का सामना है, मीडिया को प्रेशर है, मसाइल हैं। तो अब क्या ये जो वेबसाइट्स हैं इन पर कभी कभी तो हम देखते हैं वो जो कॉलम अखबार में नहीं छप सका वो लोग आप लोग छाप देते हैं या दूसरी वेबसाइट छाप देती हैं, लेकिन क्या ये वेबसाइट्स सेंसरशिप से बच सकती हैं? ये मैंने हारून रशीद साहब से भी पूछा, आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या हम अवॉइड कर सकते हैं सेंसरशिप को या ये भी उस जद में आ जाती हैं?
देखिए, 100% अवॉइड करना तो मुमकिन नहीं है। पहली बात है, आजकल तो दुनिया भर में आलमी तौर पर ये जो है एक फासिज्म की लहर दौड़ी हुई है, हर जगह ही कटघने हैं आजादी इजहार पर, तकरीर पर, तहरीर पर। तो उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि वेबसाइट से आप बच जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट भी ब्लॉक हो जाती है। पाकिस्तान में बहुत सी वेबसाइट ब्लॉक हुई है। हमारा अपना जो था नया दौर की पहली वेबसाइट, वो कुछ देर नहीं चली। लेकिन अब वाकया इस तरह से है कि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के और इंटरनेट पर, वह अब उनकी तादाद में इस कदर इजाफा हो चुका है कि आप एक को तो ब्लॉक कर देंगे मगर 6 और मौजूद होंगे जो आपकी बात को, आपकी आवाज को पहुंचा देंगे। तो जैसे medium.com है, एक और ग्लोबल पब्लिशिंग जो है प्लेटफॉर्म है। पहले ब्लॉगिंग के मुख्तलिफ होते थे प्लेटफॉर्म्स, अब फेसबुक भी है, ट्विटर भी है वगैरह, इंस्टाग्राम का अपना IGTV है। तो इसलिए अब आप किस किस को ब्लॉग करेंगे? एक को कर लेंगे, 2 को कर लेंगे, 3 को कर लेंगे, 4 को कर लेंगे, लेकिन फिर भी इंटरनेट ने कुछ स्पेस इतनी बढ़ा दी है कि अब मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप मुमकिन नहीं रही।
ठीक, तो ये बात उनकी भी समझ में आ गई होगी कि जो सेंसरशिप चाहते हैं तो वो भी नए ज़राए इख्तियार कर रहे होंगे इस चीज़ के लिए। जैसे हम ये देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं, यानी आपने एक ढंग की बात की और 10 लोगों ने बेढंगी बात करना शुरू कर दी ताकि आपकी बात खो जाए कहीं पर। तो क्या ये इस चीज़ का सामना इंटरनेट पर आपको करना पड़ता है?
जी, रोज करना पड़ता है। इंटरनेट तो एक तूफान बदतमीजी का एक छोटा सा, वो क्या कहते हैं, डेली एक्सपीरियंस होता है। मगर देखिए, इसमें 2 बातें मैं आपसे कहूंगा। पहली तो ये बात है कि सिर्फ यहाँ पर सेंसरशिप की बात नहीं हो रही कि वेबसाइट्स और इंटरनेट क्या फराहम करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर फर्ज कीजिए कि सेंसरशिप ना भी हो, तो फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मकसद है वो है प्रॉफिट बनाना, कॉर्पोरेट जो है अपनी सौदा बेचना। उसमें वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते। जैसे कि अमेरिका में भी देख लीजिए, बड़े बड़े आउटलेट्स जो है वो बहुत सारे अवामी मसाइल जो है उनका जिक्र नहीं करते, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का जिक्र नहीं करते, गन्स के ऊपर जो रोज यहाँ पे बच्चे और लोग
मरते
हैं उसका जिक्र नहीं होता, सियाफ आम लोगों के ऊपर जो मजालिम होते हैं हर घंटे हर मिनट पे, उसकी उस तरह से कवरेज नहीं होती जो कि अल्टरनेटिव मीडिया करता है। तो पहली तो ये बात है कि वेबसाइट का और इंटरनेट पर आप पाकिस्तान के तनाजुर में आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान में मसलन माहौलियाती तब्दीली जो है, क्लाइमेट चेंज जिसे आमतौर पर समझा जाता है, कहा जाता है, उसके ऊपर शाज और नादिर ही बात होती है। अब उस पर तो भैया किसी ने सेंसरशिप नहीं लगाई ना
जी।
या ये कि पानी का जो इशू है, तालीम का जो इशू है, सेहत के जो पब्लिक हेल्थ के मसाइल है, मतलब पाकिस्तान के बड़े शहर जो है वो दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में उनका शुमार होता है, लेकिन आपको कम ही चर्चा उसका दिखाई देगा। फॉलो अप स्टोरीज, इन डेप्थ स्टोरीज, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, या हत्ता के टीवी के ऊपर जो मुबाहसे हैं उनमें भी उनका कम ही जिक्र होगा। बस वो होगा कि ये नवाज शरीफ ने किया या इमरान खान ने किया या शहबाज ने किया है, मतलब इस तरह की सतही गुफ्तगू होगी। तो अवाम को जो मालूमात चाहिए, जो अवाम को रहनुमाई चाहिए, जो उनको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो पहले तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं आपने जो सवाल आपके सवाल से मुंसलिक बात है, और वो ये है कि जो ये अल्टरनेटिव मीडिया या इंडिपेंडेंट मीडिया, जो भी आप इसका नाम दें, जो कि वेब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से मौजूद होता है वो उसके पास भी तरीकेकार जो है वो होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी बदतमीजी हो रही है और ट्रेंड चल रहे हैं और शोर हो रहा है, तो उसमें जब आपकी बात आपके पास कुछ कहने को हो तो लोग बिल्कुल सुनते हैं और वो उभर कर आता है, वो फॉलो भी होता है। और एक बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि लोग अब बदतमीजी का मुकाबला बदतमीजी से करते हैं, गाली का मुकाबला गाली से करते हैं, तो उसमें कहीं जो है वो फिर मैसेज दब जाता है। इसलिए हत्तल वसा कोशिश होनी चाहिए कि इससे गुरेज किया जाए।
बहुत खूब। अब एक बात ये कि इसी चीज़ को रोकने के लिए कि जो लोग गालम गलोच करते हैं और जो शोर मचाते हैं इस तरह या ट्रोलिंग करते हैं, तो उसके लिए एक बेहतर तरीका शायद ये हो कि उस इंटरनेट को रेगुलेट किया जाए या सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, और मुख्तलिफ हुकूमतें ख़ासतौर पर यूरोप में ये चाहती भी हैं। तो फिर आप बताएं कि क्या ज़ाबता इखलाक होना चाहिए या पैमरा जैसे कोई इदारा इसका निगरान होना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, या ये मुमकिन ही नहीं है?
नहीं, ये मुमकिन बिल्कुल है, लेकिन ये पैमरा और पुलिस और उससे नहीं होगा जो कि लोग समझते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी कानून बना दिए गए हैं कि भाई ये आप ये करेंगे तो वो करेंगे, मुबहम सी जो है ताज़ीरात शामिल कर दी गई है, आप उसे किसी तरह भी खींच लें, किसी तरह भी इंटरप्रेट कर लें, तो उससे ये नहीं होगा। ये होगा, एक तो जाहिर बात है लोगों की अखलाकी तरबियत और अवेयरनेस से होगा, दूसरी अहम बात है जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, मसलन के फेसबुक या गूगल या ट्विटर या दीगर इस तरह की बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो है, ये उनका कॉन्डक्ट है कि उनकी जवाबदेही नहीं है। अभी आपने देखा कि हालिया अमरीकी इलेक्शन में अब ये साबित हो गया 2016 में कि फेसबुक ने एक लेवल के ऊपर एक किरदार अदा किया था, सारी आवाम को तो नहीं लेकिन अच्छी खासी तादाद में लोगों को वो रागिब करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। फिर उनकी हेयरिंग्स भी हुई कांग्रेस में, वो अभी ताहाल जारी है, लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं हो सकी क्योंकि फेसबुक जो है वो अरबपति उसके मालिक जो है वो आप और मुझसे और हम सब से मिलकर कहीं ज्यादा दौलत के है उनके पास, और गूगल का भी यही आलम है। तो ये मोनोपोलीज बन गई हैं असल में। देखिए, मोनोपोली जो होती है वो माशियात में भी वो एक अच्छी चीज नहीं होती। आपको मोनोपोलीज को अगर आप इजाजत देते हैं तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, और यही हाल हो रहा है कि फेसबुक का जब दिल चाहता है वो किसी को ऊपर कर देता है और किसी को नीचे कर देता है। गूगल के इंजन में अगर आप उनको पसंद है तो आप अपेयर होंगे, अगर आप नहीं पसंद तो आप नहीं अपेयर होंगे। तो इसलिए ये वाकया और मामला है इनकी रेगुलेशन का, इन कंपनियों की।
ठीक है,
इससे पहले कि हम यूजर्स को की पुलिसिंग करें, हमें इन बड़ी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही करनी पड़ेगी।
बहुत अच्छी बात है। अब एक बात ये कि कुछ न्यूज वेबसाइट्स पे या ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर हम देखते हैं कि सारा या बेशतर माल जो होता है वो टेक्स्ट में होता है, ऑडियो वीडियो मवाद कम होता है। हालांकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं YouTube और दूसरी वेबसाइट्स, उनकी मकबूलियत की वजह ये है कि वहाँ पे वीडियो मवाद ऑडियो मवाद ज़्यादा है। अब उसे तख्लीक करना ही मुश्किल नहीं है, जब आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सब काम ये कर सकते हैं बहुत आराम से। तो फिर हमारी वेबसाइट्स पर ये ऑडियो वीडियो मटेरियल क्यों नहीं होता? क्या हमारी ऑडियंस को दिलचस्पी नहीं है, या हमारे यहाँ लोग ये करने को तैयार नहीं है, या टेक्निकल नो हाउ नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हैं?
जी देखिए, टेक्निकल नो हाउ की भी कमी है, मेरे ख्याल से लोग तो बिल्कुल तैयार है। अब जो आपने जिक्र किया नया दौर डॉट टीवी जो वेबसाइट मैं चलाता हूँ और उसके साथ मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स है, तो हमारा आधा से ज्यादा काम वीडियो बेस्ड है और उस पर बहुत ज्यादा जो है लोगों की यू समझिए इंगेजमेंट भी होती है और उनके कॉमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि जो अक्सरियत लोगों की है वो अब मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट तक पहुंचते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल के ऊपर जाहिर बात है लंबे लंबे मजामीन और किताबें पढ़ना मुमकिन नहीं होता या इतना आसान नहीं होता, उस पर वीडियो ज्यादा चलती है या ऑडियो ज्यादा चलता है, तो उसके ऊपर बहुत ट्रैफिक आता है। अब यहाँ पे रुझान बन रहा है पाकिस्तान में 8-10 तकरीबन पिछले 2-1 सालों में 8-10 आउटलेट्स बन गए हैं, और जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भी डिजिटल मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए ट्रेंड मैन पावर, जिसे आपने कहा नो हाउ, वो कम है अभी। ये मुझे इसका थोड़ा नजर भी हुआ है क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ और लोगों को जो है ट्रेन भी करता हूँ, रिक्रूट भी करता हूँ, तो बहुत कम है जो कि इस तरह मल्टीमीडिया स्किल्स के साथ आते हैं। कोई टेक्स्ट वाला होता तो बस टेक्स्ट ही जानता है, कोई वीडियो वाला होता तो वीडियो ही जानता है।
ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور بہت قیمتی معلومات ہم سے شیئر کرنے کے لیے، میں بہت احسان مند ہوں۔ ہمیں جمال عبداللہ عثمان صاحب نے جوائن کر لیا ہے، جو ویب سائٹ دلیل کے ایڈیٹر ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جمال صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دلیل قائم کرنے کا خیال کیوں آیا، کون لوگ تھے، کیا کس سوچ کے تحت اسے قائم کیا، کچھ ہمیں تفصیل بتائیں۔
بہت شکریہ مبشر علی زیدی صاحب، آپ کا اور باقی ادارے وائس آف امریکہ کا، ایک اچھے موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مبشر صاحب، دلیل جو ویب سائٹ تھی یہ کچھ دوستوں نے مل کر بنائی تھی، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یعنی کمانے کا نہیں تھا، بلکہ اس کو ہم ایک نظریاتی طور پر ویب سائٹ بنانا چاہ رہے تھے، جو نظریہ پاکستان اور ہمارے یہاں جس قسم کے نوجوانوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، انہیں نظریاتی طور پر ان کو ٹھیک طریقے سے ان مسائل کو ہینڈل کیا جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے۔ تو ہمیں تقریباً اس میدان میں آئے ہوئے کوئی 2.5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اور اللہ کا شکر اس وقت دلیل جو ہے وہ پاکستان کی لیڈنگ سائٹس میں ہے بلاگنگ کی دنیا میں۔ بہت اچھے انٹرویوز ہم نے کیے جو مین اسٹریم میڈیا کے اندر باقاعدہ ڈسکس ہوئے۔ ہمارا کانٹینٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھا کانٹینٹ ہم دیتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے رائٹرز کو جو ہے وہ متعارف کرایا، جو فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرتے تھے، لیکن اب اس وقت وہ بہت اچھی تحریریں لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔
ٹھیک، تو اب جو آغاز میں آپ کے مقاصد تھے، یعنی لبرل سوچ کے مقابلے پر دائیں بازو کا بیانیہ تشکیل دینا اور اسے فروغ دینا، آپ سمجھتے ہیں اس میں کامیابی ہوئی ہے، کچھ اور لوگوں کو متاثر بھی کیا آپ لوگوں نے، یا صرف وہی لوگ جو ایک خاص سوچ کے تھے وہی آپ کی ویب سائٹ پر آتے ہیں اور وہی لکھتے ہیں؟
بنیادی طور پر ویسے لبرل یا غیر لبرل تو خیر ہم اسے نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہیں جنہیں آپ عام زندگی میں یا جیسے جو مشہور ہے لبرل کے لیے، وہ بھی ہمارے ہاں لکھتے ہیں، اور یعنی کافی بڑی تعداد ہیں، اگر میں ان کے نام لینا شروع کر دوں تو شاید ایک پوری فہرست آپ کے سامنے گنوا دوں گا۔ اصل میں جو بنیادی مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم جو غلط رجحانات ہیں ان غلط رجحانات کو کسی طریقے سے ہم کاؤنٹر کر سکیں، تو اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خصوصاً نوجوانوں کے اندر ایک کنفیوژن تھا، اس کنفیوژن کو ہم دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیں جو فیڈ بیک آتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیں خصوصاً جیسے میں نے گزارش کی کہ لکھنے والے جو نئے لکھنے والے تھے ان میں سے ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو متعارف کرایا ہے کہ اس وقت اخبارات کے اندر لکھتے ہیں اور ان کی تحریریں یعنی پڑھی جاتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ان اخبارات کے لیے پیسے لے کر وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ہماری کامیابی ہے، یعنی بنیادی مقصد تو وہی نظریہ پاکستان اور ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھانا تھا کہ جو ملک اور قوم کے لیے اور ملت کے لیے فائدہ مند ہو۔
اچھا چلیں، یہ تو بہت مثبت بات ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا نیوز ویب سائٹ کو یا بلاگنگ ویب سائٹ کو نظریاتی ہونا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس سے پھر تلخی جنم نہیں لیتی؟ یعنی ایک کوئی ویب سائٹ ہو جس پہ ہر طرح کے لکھنے والے ہیں تو وہاں پہ آپ کی بات دوسرے لوگ بھی سن لیں گے، لیکن آپ ایک الگ ویب سائٹ قائم کرتے ہیں جو کہ ایک طرح سے آپ کا اپنے ایک بیٹھک بن جاتی ہے، اور اس میں خاص طرح کے ذہن کے لوگ ہوں گے، چاہے وہ روشن خیال ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ صرف دائیں بازو کے لوگ ہوں، بائیں بازو کے لوگ ہوں یا کسی اور سوچ کے لوگ ہوں، تو وہ ان کا پھر ان کا دائرہ محدود نہیں ہو جاتا، ہر ایک تک پھر ان کی ریچ نہیں رہتی؟
میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان چونکہ ہمارا اصل جو ہے وہ جو ہمارا ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی، یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ تقریباً میں محتاط ہو کر بھی 95% ان لوگوں پر مشتمل ہے جو مذہب کو اور دین کو پسند کرتی ہے، مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اگر فرض کریں ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور باقی جو 5% لوگ بچتے ہیں یا مذہب کے ساتھ ان کا بہت زیادہ سروکار نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ بھی ہم باقاعدہ دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انتشار پھیلاتے ہوں، ہم کسی کے خلاف کوئی کمپین بناتے ہوں، ہم किसी के खिलाफ ऐसी तहरीरें लिखते हों, आप हमारी वेबसाइट पर देखिएगा जो मैंने खुसूसन इंटरव्यूज किए हैं।
जी जी, हमने
इंटरव्यूज के अंदर ऐसे भी लोगों के इंटरव्यूज हैं कि जो आप कह सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में लिबरल हैं, और वो कुछ ऐसी भी हैं जो लिबरल सोच की बाकायदा नुमाइंदगी करते हैं। तो बुनियादी मकसद मैंने जैसे वही बताया कि पाकिस्तान की चूंकि अक्सरियत जो है वो इसी तबके पर मुश्तमिल है, अगर हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं तो मेरे ख्याल इसमें कुछ मज़ायका नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एक बस ये आखिरी बात उसी हवाले से जो मैं दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वेबसाइट चलाना सिर्फ शौकिया काम है, या ज़ाहिर है आप अगर नज़रिए से मुंसलिक हैं तो ज़ाहिर है एक और जज्बे से काम करते होंगे, लेकिन ये मुनाफा बख्श इदारा बनाने का की कोई सूरत नहीं है, या मुस्तकबिल आपको क्या क्या नज़र आता है?
इस हवाले से दरअसल मैं चूँकि खुशकिस्मती कह सकते हैं कि मैं अपने 16-17 साल करियर के दौरान में मुख्तलिफ हैसियतों से तीनों इदारों के साथ वाबस्ता रहा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल। तो इस लिहाज से जो तीनों की खूबियां और खामियां हैं उनका कुछ ना कुछ मुझे अहाता करने में आसानी होती है। दरअसल इसको वही जैसे मैंने गुजारिश की कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक तो मैंने वही कि आप नजरियाती लिहाज से कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि बिजनेस मॉडल के तौर पर यहाँ पे है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तकबिल के बहुत से इम्कानात हैं, उनके लिए कुछ तो सरकारी सतह पर करने की जरूरत है, मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। और उसमें एक वक्त था आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले जब फेसबुक पे लोग 1 मिलियन का और 12 लाख का 15 लाख के पेज बनाते थे, वेबसाइट खड़ी कर देते थे, और उसके नतीजे में उनको बहुत आराम से $2,500-3,000 जो है वो घर बैठे मिल जाते थे। अब थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, फेसबुक ने अपनी रीच कम कर ली है, जब आप लिंक डालते हैं तो वो लिंक जो है वो उस तरह की रीच उसकी नहीं हो पाती, तो मुश्किलात तो हैं। लेकिन मैं जब इसको देखता हूँ तो इसमें यानी इम्कानात भी बहुत ज्यादा हैं। इम्कानात इस तरह हैं कि अगर फर्ज करें लोकल मार्केट पर फोकस किया जाए, हमारे यहाँ जो गूगल को इश्तहारात मिलते हैं हमारे ही इदारों से मिलते हैं, पाकिस्तान से ही मिलते हैं, वो इश्तहारात उनको डॉलर की यानी अगर फर्ज करें $20 में एक इश्तहार मिलता है तो वही डॉलर उसी पाकिस्तान में आकर हमें $2 में मिलता है। तो हमें लोकल मार्केट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए,
अच्छी बात
उनसे कहना चाहिए।
ठीक है जी जमाल साहब, बहुत शुक्रिया, ये बहुत आपने जी आपने बहुत अच्छा ख्याल पेश किया, और इस पर दूसरी वेबसाइट्स को भी सोचना चाहिए, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल काबिल अमल है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब हमें मोहम्मद शुएब साहब ने ज्वाइन कर लिया जो लालटेन वेबसाइट के एडिटर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, अभी हम दलील के एडिटर जमाल अब्दुल्ला उस्मान से बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे ही बात करना यहाँ पे बहुत मुनासिब और बरमहल है। आप बताएं लालटेन का आगाज़ कैसे हुआ और ये क्या क्या किस सोच के तहत इसे कायम किया गया था?
देखिए लालटेन का जो आगाज था वो तो उसका जो बुनियादी मकसद था उस वक्त वो तो एक गैर सरकारी तंजीम जो है उसका जो असल काम था, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बहुत आम थे और उस जमाने में तालिबान जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान के नौजवानों को शिद्दत पसंद की तरफ मायल करने की कोशिशें जारी थी। तो उस वक्त इसका आगाज इसी सोच के तहत किया गया था कि नौजवानों को एक मुतबादल जो है वो मुहैया किया जाए और उनकी जो आवाजें हैं उनको इस तरह से सामने लाया जाए कि वो ना सिर्फ अपनी बात कह सकें बल्कि वो मुतबादल नुकात नजर से वाकिफ भी हो सकें। तो उस जमाने में इसका आगाज इस वजह से किया गया था। लेकिन जो वक्त के साथ साथ लालटेन का सफर है वो हमने देखा है कि शिद्दत पसंदी की एक जंग से दूसरी जंग की तरफ मुबतला हुआ है उसको, तो उसको हमने देखा कि उसका रुख तब्दील किया हमने। तो ये एक मुख्तसर कहानी इसकी है कि जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के रुजो जवाल की कहानी है वो किसी हद तक लालटेन से भी जुड़ी हुई है।
अच्छा, ये एक प्रोग्रेसिव न्यूज़ एंड करंट अफेयर वेबसाइट थी, न्यूज़ तो नहीं सके ब्लॉगिंग कहना चाहिए या करंट अफेयर से भी ज़ाहिर मुंसलिक थी, लेकिन फिर अब आपने इसका रुख बदल दिया, कुछ अदब की तरफ ज़्यादा इसका रुझान हो गया है और कुछ थोड़ा मैंने अभी इसकी वेबसाइट देखी है फ्रंट पेज, तो उसमें कुछ आपने कॉमेडी के भी डाले हुए हैं, तो क्या तावुन करने वाले कम हो गए, क्यों इसका रुख बदलना पड़ा?
देखिए ऐसा नहीं था कि ताउन करने वाले कम हो गए थे, बल्कि अब भी जबकि हमने लालटेन के हवाले से ये तब्दील किया कि इस अब हम सिर्फ जदीद अदब को मौका देंगे या नए लिखने वालों को जो कि अदब में तजर्बे के काबिल के कायल हैं उनको मौका देंगे, तो अब भी दोस्त हमें भेजते हैं चीज़ें और जो लालटेन के लिए लिखने वाले हैं वो अब भी उसको याद रखते हैं हमेशा। जो असल में इसकी तब्दीली की बड़ी वजह थी वो ये थी कि जब बहुत सारी और अहम वेबसाइट जैसे वजाहत मसूद साहब ने जो जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सभी सबसे मयारी वेबसाइट है जो हम सब है जहाँ पे बहुत से लिखने वाले लिखे हैं, उसके आगाज के बाद हमें ये एहसास हुआ था कि ख्याल हालात हाजरा पे और इन मौजूद पर जो सियासत से मुतालिक हैं बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, और अब मेरे ख्याल से सब लिखने वालों को वहाँ लिखना चाहिए जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा कारीन मयसर आ सकें और एक एक ऐसी जगह जहाँ पे हर किस्म के नुक्ता नजर के लोग आके बात कर सके तो वहाँ बात होनी चाहिए। तो फिर हमारे सामने ये एक रास्ता मौजूद था कि वो बहुत सारे और महाज या बहुत सारे महाज से ज्यादा मैं कहना चाहूँगा बहुत सारे और मैदान जो है जहाँ पे शायद लिखने वालों को मौके नहीं मिल रहे उस तरफ रुख किया जाए, तो हमें लगा कि शायद अदब एक ऐसी चीज है जिस तक आम कारी की रसाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही, खासतौर पर नए लिखने वाले जो हैं जो अदब में नज़्म के मैदान में या नसर के मैदान में कोई नया तजर्बा करना चाहते हैं। और इसकी तहरीक बहुत तक हमें अजमल कमाल साहब के आज से भी मिली थी कि जिस जमाने में उन्होंने शुरू किया था तो मैं उसका बाकायदा कारी था और मुझे लगता था कि उस रिसाले ने हमें दुनिया भर के अदब से मुतारिफ कराया था, तो अब हमें शायद ऑनलाइन दुनिया में भी ऐसे ही एक रिसाले की जरूरत पड़ेगी जिसपे पढ़ने वाले जो हैं वो दुनिया भर की आवाजों से और अपने यहाँ की आवाजों से भी जो है वो वाकिफ हो सके।
ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक नीश मार्केट अपने लिए खुद कायम की और मेरा ख्याल है एक रोशन के नाम से जो वेबसाइट है वो भी अदब के लिए इस तरह खिदमत अंजाम दे रही है। हमारे दोस्त कासिम याकूब उसके एडिटर हैं जो निकात के नाम से भी एक पर्चा निकालते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, किसी और दिन तफसील से बात करेंगे और लालटेन के रूज और जो भी सूरत हाल थी और जिन लोगों को आप छापते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और 30 सेकंड के बाद हम फिर वापस आएंगे और अपनी एक मेहमान से जो स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनसे गुफ्तगू करेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वेलकम बैक। अब हम तारुफ कराना चाहते हैं बेनजीर समद का जो ARY से वाबस्ता रही हैं 5 साल तक और आजकल फुलब्राइट हम्फ्रे फेलोशिप के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम हैं। सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह जानती हैं इसलिए हमने उन्हें आज दावत दी कि इस बारे में गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। हम न्यूज़ वेबसाइट्स की, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रही हैं, तो लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा, किसी की रीडरशिप ज़्यादा है, किसी के फॉलोअर्स कम है, आप कुछ हमें बता सकती हैं किस तरह की वेबसाइट्स मकबूल हो जाती हैं? क्या इसका कोई फार्मूला है या कोई मवाद की अहमियत है या सिर्फ किस्मत की बात?
थैंक यू मुबशर फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने वेबसाइट्स की बात की, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग न्यूज़ वेबसाइट्स और इस तरह की वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में खोल रहे हैं और जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं उन्होंने भी पर्सनली बहुत सारी वेबसाइट्स खोली हैं जिसमें वो डिफरेंट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें बात यह होती है कि आप वेबसाइट बनाने का तो सोच लेते हैं लेकिन आप अपने आप को टेक्निकली इस तरह इक्विप नहीं करते हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि मैं टेक्निकली इस काबिल हूँ कि मैं इस वेबसाइट को चला सकता हूँ, मुझे इतनी अवेयरनेस है कि वेबसाइट चलाने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं। और सबसे पहली बात जो इसमें मोनेटाइजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप एक स्टाफ हायर करते हैं आप उनको ऑफकोर्स फिर सैलरी देते हैं, उसके अलावा आप सिस्टम्स ख़रीदते हैं और दूसरी सारी जो चीज़ें सर्वर की कॉस्ट होती है, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो या तो आपके पास एक इस तरह की फंडिंग हो कि आप फिर बस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े कि एड्स आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और आप अपना पूरा फोकस देते हैं कंटेंट के ऊपर। और ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ द किंग, जितना अच्छा कंटेंट होगा उतने लोगों की नज़रें आप पर होंगी और वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा आएंगे। लेकिन अगर आपके पास फंडिंग मौजूद नहीं है और आपने अपने बलबूते पे एक वेबसाइट बनाई है तो मोनेटाइज करने के लिए ये तमाम जो नए वेबसाइट्स हैं नए नए तरीके सोचने की कोशिश करते हैं। सबको पता है कि लाइक फेसबुक और सोशल मीडिया जो भी है वो एक टूल है जिसके थ्रू लोग अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लाते हैं, लेकिन फेसबुक वगैरह ने भी इस बात को रियलाइज़ करके इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू अब अपना जो लोग होते हैं उनको उसी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं इंस्टेड ऑफ कि उनको उस यूज़र की वेबसाइट पर भेजें, क्योंकि फिर वो वहाँ अपने एड्स चला रहा होता है। तो जितने ज़्यादा वेबसाइट वाले कोशिश करते हैं कि वो तरीके लाएं, तो जो सामने से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले ने भी सोचा कि मैं क्यों उनका फ़ायदा कराऊं, तो उन्होंने इंस्टेंट आर्टिकल शुरू कर दिया। इसके अलावा ये होता है कि सबसे फिर मोस्ट पॉपुलर है कि लोग अपनी वेबसाइट्स पर ऐड लगाते हैं, तो या तो फिर उसमें दो तरीके होते हैं कि आप एडवर्टाइज़र्स के साथ ख़ुद काम करें, या फिर एक मिडल मैन होता है जो जाके आपके लिए एड्स लेके आता है, फिर आप उसको कमीशन देते हैं और इस तरह से आप काम करते हैं। और फिर होता है कि आप गूगल एडसेंस के थ्रू, अगर आपका ट्रैफिक अच्छा होता है तो वो गूगल एडसेंस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और आपको इश्तहार मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट ट्रैफिक तो उस वक्त आएगा जब सबको आपका पता हो कि ओ ठीक है, मुझे पता है कि मुझे don.com पे जाके स्टोरी पढ़नी है या मुझे arynews.tv पे जाके स्टोरी पढ़नी है, तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक आ गया। लेकिन नई वेबसाइट्स का नाम रजिस्टर होने में उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, तो डायरेक्ट ट्रैफिक तो वो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट फिर सर्च इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मतलब बड़ी वेबसाइट्स भी अब बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि मुझे पता है कि कोई इवेंट हो रहा है तो मैं जाके गूगल पे उसको सर्च करूँगा और उस वक्त जो सबसे ऊपर आएगी वेबसाइट मोस्ट लाइकली मैं उसी को क्लिक करूँगी। तो उसमें यह है कि सर्च इंजन पे जितना बंदा अपनी ग्रिप अच्छी रखता है और जितना ऑप्टिमाइज अच्छी तरह करता है उसके चांसेस ऊपर आने के ज़्यादा होते हैं, और दिस इज़ हाउ उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा लोग फिर और जो क्रिएटिव होते हैं वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का, जैसे टूरिज्म वेबसाइट्स हैं वो किसी होटल और एयरलाइंस के ऐड लगाते हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के जो टूल इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उनकी वेबसाइट से वहाँ बुकिंग की है तो 30% आपको उसका कमीशन मिल गया।
बेनज़ीर, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, यानी जो एक आम शख्स जो
हाँ मतलब इसमें यही है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस बंदे को जो वेबसाइट शुरू करता है वो बहुत सारे तरीके देख रहा होता है कि मैं किस तरह से इसको मोनेटाइज करूँ और अपनी वेबसाइट के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करूँ, या फिर उसके पास ऐसी फंडिंग होती है कि वो उस फंडिंग के थ्रू ज़्यादा एड्स, ऑफकोर्स एड्स बहुत अनोइंग भी होते हैं, अगर मैं एक कॉन्टेंट पढ़ रही हूँ बार बार मेरे मुँह पर ऐड खुल रहा है तो मैं उस कॉन्टेंट को बंद कर दूँगी। तो हमेशा अपनी कॉन्टेंट को आप प्रायोरिटी रखें। अगर आपका सिर्फ मकसद पैसे कमाना होगा तो उस वक्त फिर आप अपनी पूरी वेबसाइट को एड्स से भर देंगे तो फिर आपका कोई कंटेंट देखने भी नहीं आएगा, वो कहेगा कि मतलब हर कहीं ये एड्स खुल रहे हैं। तो आपका ऑफ कोर्स वो क्लीन एक आपकी वेबसाइट का लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर कंटेंट सबसे ज़्यादा। जैसे कि जो नई वेबसाइट खुली है जिसमें बड़े नाम, अच्छा कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जब आप अपने आर्टिकल्स दूसरी न्यूज़ चैनल्स की और जो पॉपुलर वेबसाइट्स को भेजते हैं वो नहीं पब्लिश करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज। तो अब ऐसी वेबसाइट्स भी खुल गई हैं जहाँ आपका पब्लिश नहीं हुआ होता है, ये वेबसाइट आपकी हर चीज़ लगाने को तैयार होती है। तो इसके थ्रू जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुए, उनके पास बड़े नाम आए, तो सेंसरशिप से बचने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो मेरा आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मैं इसके थ्रू चली जाती हूँ। तो इस तरह की वेबसाइट्स ने काफ़ी वो किया, बट अगेन वो लोगों के पास स्टिल वो अभी इस तरह के आई थिंक टेक्निकल इक्विप नहीं है कि वो उसके ऊपर मोनिटाइज करके उस कॉन्टेंट को मतलब उस पर पैसे कमा सकें। ऑफ कोर्स कॉन्टेंट वाइज उनका बहुत बेस्ट है,
तो मुस्तकबिल में कभी पैसे कमा सकें,
पैसे तो कमा सकते हैं। उसमें यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे तरीके जो हैं सोशल मीडिया और ये जो सारे तरीके हैं, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, आज एक तरीका आ गया कल दूसरा तरीका आ गया और इवॉल्व होती रहती है। फेसबुक के पास फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप ये भी कर सकते हैं, इसी तरह वेबसाइट्स भी इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो बस आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी से फेमिलियर रखना होगा, अपने आप को अपडेट रखना होगा, और अगर आपने वेबसाइट चलानी है और आपने उसमें पैसे भी कमाने हैं तो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपको फिर मोनेटाइजेशन की तरफ भी फोकस अपना।
अच्छा, ये जो वेबसाइट्स हैं जो जैसे हम सब है या जो जिनका किसी मीडिया ग्रुप से ताल्लुक नहीं है, क्या वो उनको मुकाबला करने के लिए मीडिया ग्रुप ने जैसे जंग ने, डॉन ने, इन सब ने अपनी वेबसाइट्स भी कायम कर ली हैं, तो ये उनके दूसरे मीडिया को हर्ट करती हैं या ये जो न्यूज़ वेबसाइट जो इंडिपेंडेंट हैं उनको नुकसान पहुँचाती हैं, इसमें कौन जीत जाता है इस लड़ाई में?
उनके पास ये जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं इनके पास ये फ़ायदा होता है कि ये किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। इनके पास ये होता है अगर मेरा आर्टिकल किसी न्यूज़ चैनल ने रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, और वो क्योंकि आपको पता है कि लोगों को चटपटा कंटेंट चाहिए, लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए जो वो कहीं नहीं देख रहा, तो जब इस तरह की वेबसाइट इस तरह का कंटेंट लगाती हैं तो वो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इस वाले नैरेटिव को नहीं बाय कर रही हैं, तो ऑफकोर्स वो वाला एक उनके पास एक नीश क्रिएट हो जाती है इस तरह के रीडर्स की। बट मुकाबला तो है, क्योंकि इस वक्त ये होता है कि रिसोर्सेज फिर जो टीवी चैनल्स और जो ये वेबसाइट है इनके पास ज़्यादा हैं। अब एक चैनल के पास 300-300 रिपोर्टर है पूरे मुल्क में, तो अगर वो 300 रिपोर्टर में से एक एक बंदा भी आपको हफ्ते में 2 आर्टिकल्स या 2 स्टोरीज दे रहा है तो आपके पास कंटेंट ज़्यादा है। इन वेबसाइट में दिन में 10-15 चीज़ें छप जाती हैं, लेकिन जो हम लोग जो वेबसाइट्स उस प्रोफेशनल जो उसके चैनल के वेबसाइट्स हैं वो 50 से 60 खबरें दिन में लगा रहे होते हैं, तो द मोर द बेटर।
ठीक है बेनज़ीर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और आपने इनसाइट दी हमें। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नया मीडिया है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक न्यूज़ और ब्लॉगिंग जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में।
थैंक यू सो मच।
आपका भी शुक्रिया और जिन मेहमानों ने और जिन दोस्तों ने आज हमें ज्वाइन किया हमारी गुफ्तगू सुनी उनका बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुबशर अली ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल्ड गिल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल पर दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान कहा है कि वीडियो में हाई प्रोफाइल लोग हैं तो सब आ गए लेकिन अदालत के सामने सब बराबर हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से अली राना की रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि आजाद लोग खुद काम करते हैं, किसी के कहने पर नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वीडियो लीक मामले पर कमीशन बन भी गया तो इसकी राय सबूत नहीं होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदियार पर मुश्तमल 3 रुकनी बेंच ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल की समाअत की। समाअत के मौके पर महमूद खान अचकजई, तारिक फजल चौधरी, जावेद हाशमी और रफीक रिजवाना भी कमरा अदालत में मौजूद थे। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा के वकील मुनीर सादिक ने अपने दलाइल में मौकफ इख्तियार किया कि इल्जाम आयद किया गया कि जज ने फैसला किसी के इमाम पर दिया। जज ने इल्जाम की तरदीद कर दी। जज ने कहा कि वीडियो के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा गया है। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में ब्लैकमेलिंग की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि अदलिया पर संगीन इल्जाम अवामी मुफाद का मामला है। वजीर आजम ने भी अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहकीकात की बात की। सियासी जमातों ने भी अदालत से तहकीकात का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सो मोटो अदालत खुद लेती है, किसी की डिमांड पर लिया गया नोटिस सो मोटो नहीं होता। आपकी दरख्वास्त भी यही है कि जजेस डिमांड पर ना चलें। लोगों के कहने पर नोटिस लेने से अदलिया की आज़ादी पर सवाल नहीं उठेंगे। मुनीर सादिक ने कहा कि अदालत जुडिशियल इंक्वायरी कराए तो ज्यादा बेहतर है। इंक्वायरी कमीशन में जो चाहे बयान रिकॉर्ड कराए। इंक्वायरी कमीशन इल्जामात और जवाब की सच्चाई का तयन करेगा। बेहतर होगा कि कोई जज कमीशन की सरबराही करे। इस हवाले से केस में दरख्वास्त गुजार सुहेल अकरम के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट कहते हैं कि इस मामले पर तहकीकात होना बहुत जरूरी है।
मेरा नुकसान नजर ये था कि ये अपनी जगह बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत करीब से एक दूसरे को टच कर रही हैं, मगर अगर ये जो ओवरऑल इस वक्त सिस्टम के अंदर और जुडिशरी के हवाले से एक रोयन का अमल है, इसको रोकने की भी तो जरूरत है। अब ये किसका रास्ता किस तरह से बनाया जाए कि ये चीजें रुक जाए। मैंने कहा इस वक्त मीडिया के ऊपर एक तूफान आया हुआ है स्टेटमेंट का फॉर एंड अगेंस्ट, और ये सिलसिला एक्विजिशन की शक्ल में इल्जामात की शक्ल में यकीनन वाइड स्प्रेड है।
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि जिम्मेदार लोगों को अमूमी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए, कमीशन बन भी गया तो इसकी राय सबूत नहीं होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की अपील हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है, कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में अपील पर असरअंदाज हो सकती है। क्या आपको हाई कोर्ट पर एतमाद नहीं है? इस पर वकील मुनीर सादिक ने कहा कि किसी में जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जज को ब्लैकमेल करे। अदालत पनामा दर्ज की JIT बना सकती है। JIT अदालत ने अपनी मुआवनत के लिए बनाई थी, लेकिन इससे कम अज कम सच्चाई तो सामने आ गई। जज अरशद मलिक की वीडियो की बाजगश्त पार्लियामेंट हाउस में भी सुनी गयी। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जज की वीडियो सामने आने के बाद जज को हटा दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ आज भी जेल में कैद हैं।
मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक मसला जो है अदालत में है, मुझे एहतराम है عدالتوں کا، عدالتی پروسیس کا، اور مجھے نہ صرف احترام ہے بلکہ اعتماد ہے، لیکن نواز شریف آج بھی کہہ رہے ہیں۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ویڈیو اسکینڈل غیر معمولی واقعہ ہے، سوال یہ ہے جائزہ کون اور کس طرح لے گا۔ ایسے واقعہ سے نظام عدل متاثر ہونے کا کسی نے نہیں کہا، توہین عدالت کا مطلب ہوگا جج پر الزامات غلط ہیں۔ جسٹس امرتا بندیال نے عدالت میں ریمارکس دیے کہ جو دھول ابھی اٹھ رہی ہے اسے چھٹنا بھی ہے، عدلیہ کو جذبات نہیں سنجیدگی سے معاملہ دیکھنا ہے۔ وکیل طارق اسد نے کہا ہمارے اداروں کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، کیس کی سماعت 23 جولائی تک ملتوی کر دی گئی اور اٹارنی جنرل سے اس حوالے سے تجاویز طلب کر لی گئی۔ ویڈیو لیک اسکینڈل میں جج ارشد ملک کی خدمات واپس کی جا چکی ہیں، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 18 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔